नमस्कार, मैं सौरभ। आपने मुझे टीवी पर कई अलग अलग किरदारों में देखा होगा, कभी किसी पात्र में देखा तो कभी किसी किसी रूप में देखा, और उन सभी किरदारों में आपने मुझे बहुत सराहा, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। लेकिन आज मैं आपके सामने किसी किरदार के तौर पर नहीं, बल्कि एक आम आदमी बनकर आया हूं, जो आप ही की तरह रोज खबरें देखता है और उन खबरों को देखकर उसके मन में कई सवाल आते हैं। अब मैं हर रात 9 बजे डीएनए में खबर और खबर से जुड़े उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढकर आपके सामने रखूंगा। जनता का हिस्सा बनकर खबरों को देखूंगा, लेकिन सिर्फ देखूंगा नहीं, बल्कि उनका विश्लेषण भी करूंगा। मैं सिर्फ एक होस्ट बनकर डीएनए में आपसे नहीं मिलूंगा, बल्कि डीएनए के जरिए जनता का हिस्सा बनकर जनता की आवाज बनूंगा। डीएनए में मैं खबर से जुड़ा हर वो सवाल भी उठाऊंगा जो आम आदमी के दिमाग में आता है, लेकिन कभी कोई जवाब नहीं मिलता। मैं आपसे वादा करता हूं कि डीएनए में अब खबर के विश्लेषण के साथ साथ एक नया नजरिया भी होगा, क्योंकि मेरा मकसद डीएनए को आम आदमी की आवाज बनाना है और साथ ही उस आवाज को पूर्ण रूप से उठाना भी है। उम्मीद है कि मैं आपको इस नए रोल में भी पसंद आऊंगा। तो फिर शुरू करते हैं आज का डेली न्यूज एंड एनालिसिस, यानी डीएनए मेरे साथ। आज डीएनए में मैं आपको कार शोरूम वालों की काली कमाई वाले बिजनेस मॉडल का खुलासा करूंगा, जिसमें शोरूम्स वाले वेटिंग पीरियड वाली कारों के जरिए रिश्वत के रुपयों से अपनी जेबें भर रहे हैं। आपको पता होगा कि अक्सर ज्यादा डिमांड में रहने वाली कारों पर वेटिंग होती है, बुकिंग करने के बाद भी कई महीनों बाद आपको कार की डिलीवरी मिलती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक साल वेटिंग वाली कार आपको एक दिन में मिल सकती है, तो आप कहेंगे ये तो नहीं हो सकता। लेकिन यकीन मानिए, ये हो रहा है। जी न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टिंग ने अलग अलग शहरों में मारुति और हयुंडाई कार के अलग अलग शोरूम्स में चल रहे इस स्कैम को खुफिया कैमरे में रिकॉर्ड किया है, जिसमें शोरूम्स वाले खुद कह रहे हैं कि एक साल की वेटिंग वाली कार एक दिन में ले लो। आज डीएनए में हम आपको कार शोरूम वालों के वेटिंग पीरियड वाले इसी स्कैम का खुलासा दिखाएंगे, जिसे हमने नाम दिया है ऑपरेशन कारनामा। हिंदुस्तान को अनेकता में एकता का देश कहा जाता है, और हमारी सांस्कृतिक विरासत वो धागा है जिसने अलग अलग धर्म, पंथ और भाषा वर्ग के लोगों को एक साथ एक तरह बांध रखा है। लेकिन हम अलग अलग होते हुए भी एक हैं। लेकिन आज एकता के इस धागे को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहारों को ही निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल बीते कुछ वक्त से हमारे देश में त्योहारों और शोभा यात्राओं पर योजनाबद्ध हिंसा का एक ऐसा खास पैटर्न चल रहा है जो बेहद डरावना है, और हरियाणा का नूह इसका सबसे ताजा उदाहरण है। इसीलिए आज डीएनए में हम हिंसा के इसी पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। समंदरों का ख्याल आते ही हमारे जहन में साफ नीले पानी और खूबसूरत बीचेस की तस्वीरें तैरने लगती हैं, और ये स्वाभाविक भी है क्योंकि हमने पानी को हमेशा नीले रंग से ही जोड़कर देखा है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना ये ख्याल बदल लीजिए, क्योंकि समंदर जल्दी ही नीले नहीं बल्कि हरे रंग के होने वाले हैं, तो आप क्या कहेंगे? हो सकता है आप चौंक जाएं। लेकिन आज हम ओशंस के बदलते रंग पर जो रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, उसे देखकर आप हैरान ही नहीं परेशान भी हो जाएंगे, क्योंकि आज हम डीएनए में क्लाइमेट चेंज के टाइम बॉम्ब का विश्लेषण करने वाले हैं। ऐसा टाइम बॉम्ब जिसकी घड़ी पूरी मानवता के सर पर टिक टिक कर रही है। डीएनए में सबसे पहले एक बहुत बड़ा कारनामा जो कार से जुड़ा है, जिसका खुलासा होते ही बड़ी बड़ी कार कंपनियों के नाम दागदार हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपको एक नई कार लेनी है। आप कार शोरूम पर गए, वहां आपने जो कार पसंद की उसके बारे में शोरूम के एग्जीक्यूटिव ने बताया कि कार की डिलीवरी मिलने में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे, तो आप क्या करेंगे? जाहिर है मायूस हो जाएंगे। आपने और आपके परिवार ने नई कार को लेकर जो सपने संजोए, वो आपको अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए नजर आएंगे। एक आम आदमी के लिए कार कितनी बड़ी चीज होती है, ये मैं भी जानता हूं और आप भी। हो सकता है कि आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ भी हो, जब आप अपनी पसंदीदा कार इसलिए ना ले पाए हो क्योंकि उसकी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी थी। लेकिन ये इंडिया है, यहां सब कुछ हो सकता है, बस जुगाड़ होना चाहिए। यही फॉर्मूला कार शोरूम्स वाले भी अपनाते हैं और ऊपर की कमाई कर लेते हैं। जी हां, आज डीएनए में हम इसी कारनामे का खुलासा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इस खुलासे का एक ट्रेलर देख लीजिए, फिर हम आपको पूरी पिक्चर भी दिखाएंगे।
भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के कुछ शोरूम ग्राहकों से छल कर रहे हैं। देश के कार बाजार में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी रखने वाली कंपनी मारुति सुजुकी के 3500 से ज्यादा स्टोर हैं। लेकिन इनमें से कई स्टोर या कहें कई शोरूम ऐसे हैं जहां कार बेचने के नाम पर धांधली हो रही है, भारतीय ग्राहकों के भरोसे के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आप कहेंगे कैसे, तो ये ऐसे।
कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है हमें?
सर ब्लैक में गाड़ी मिली है एक तरीके से।
कितना ऊपर हो गया?
लगभग
80,000
भी ले रहे हैं, 70,000 भी ले रहे हैं।
पता चला ये क्या था, ये लोग कौन हैं? आखिर ये क्या कह रहे हैं? ये लोग मारुति सुजुकी के शोरूम में काम करने वाले सीनियर स्टाफ हैं, जो कार बेचने में हो रही धांधली का हिसाब किताब समझा रहे हैं। ग्राहक से 60,000 से 70,000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों मांगा जा रहा है, और अगर मांगा जा रहा है तो उसकी रसीद देने से मना क्यों किया जा रहा है?
कितना ऊपर हो गया?
एक गाड़ी 80,000।
हाँ जी, बहुत बढ़िया।
जहां आपकी मनपसंद कार की वेटिंग 6 महीने से लेकर 1 साल तक की है, वहां शोरूम सिर्फ 1 दिन में कार दिलाने का दावा कैसे कर रहा है?
आर्टिका पे वेटिंग कितना चल रहा है
अभी? मैं बुकिंग उठाता हूँ, वेटिंग कट रहते हैं 8 मंथ की वेटिंग का मैं बुकिंग उठा रहा हूँ।
वैसे आपके यहाँ कितना वेटिंग चल रहा है अभी?
वेटिंग सेम है, अभी दबा रहे हैं वेटिंग।
कैसे ग्राहकों को वेटिंग का बहाना बनाकर तारीख पर तारीख दी जाती है और रिश्वत देने वालों को शोरूम से कुछ ही दिनों में कार मिल जाती है।
और जो ऊपर का अमाउंट है वो क्या
है? कुछ नहीं लोग अपना प्रूफ कुछ नहीं।
भारत के कार कारोबार में सालों से दबदबा बनाकर रखने वाली मारुति सुजुकी के ऐसे एक दो नहीं, देश में फैले ज्यादातर शोरूम में कार के नाम पर ब्लैक कार नामा हो रहा है, यानी धांधली या कहें वेटिंग स्कैम। हमारी टीम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और झारखंड, इन 5 राज्यों में मारुति सुजुकी और हुंडई के कई शोरूम तक पहुंची। हम ग्राहक बनकर पहुंचे थे और ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि हमें शिकायत मिली थी कि बड़ी बड़ी कार कंपनियों के शोरूम में रिश्वत देने पर गाड़ियां जल्दी मिल जाती हैं, वेटिंग का झंझट नहीं रहता, पैसे और पेपर जमा कराने के बाद भी आपको अपनी कार के लिए 6 महीने से लेकर साल भर तक का इंतजार नहीं करना पड़ता। और हमारी पड़ताल में शिकायत सही साबित हुई।
अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, पूरी पिक्चर तो अब हम आपको दिखाएंगे, जिसे देखकर एक बार के लिए तो मैं भी हैरान हो गया था। सरकारी दफ्तरों और विभागों में भ्रष्टाचार की खबरें तो आम आदमी के लिए आम हो चुकी हैं, लेकिन मारुति कार शोरूम्स वाले कैसे वेटिंग स्कैम कर रहे हैं, ये मेरे लिए भी शॉकिंग था। जी न्यूज की अंडरकवर रिपोर्टिंग टीम ने पूरी रिसर्च और सबूतों के साथ ये खुलासा किया है, जिसमें जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी के शोरूम्स के स्टाफ ने खुद ये कबूल किया है कि जिस कार की वेटिंग 6 से 8 महीने है, वो कार 2 दिन से 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। बस इसके लिए अतिरिक्त सुविधा शुल्क चुकाना होगा, जिसे आपकी और मेरी भाषा में रिश्वत कहते हैं। तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वेटिंग पीरियड की आड़ लेकर देश की सबसे बड़ी कार कंपनी के शोरूम्स में रिश्वत वाला कारनामा हो रहा है। सबसे पहले देखिए जी न्यूज के ऑपरेशन कारनामा का पार्ट 1।
15 जून 2023, फरीदाबाद, हरियाणा। मारुति सुजुकी का शोरूम TCS ऑटो वर्ल्ड।
Thank you.
दोपहर 2:41 पर हम मारुति के शोरूम में पहुंच चुके थे। शोरूम के अंदर एक जैसी ड्रेस में हमें कई लोग दिखे। ये सभी वहां काम करने वाले कर्मचारी थे। ठीक 4 मिनट बाद हम उस टेबल पर होते हैं जहां कस्टमर को कार खरीदने का प्रोसेस समझाया जाता है, और हमें ये प्रोसेस समझा रहे हैं अतीक अहमद। नीले रंग की शर्ट और चश्मा पहने ये जनाब मारुति सुजुकी के TCS ऑटो वर्ल्ड शोरूम के कस्टमर मैनेजर हैं। इनके एक हाथ में कलम है और सफेद कागज पर काले कारनामे का हिसाब हमें समझा रहे हैं। बात हो रही है मारुति सुजुकी एर्टिगा 4MCNG के 2023 मॉडल की।
ये कौन सा मॉडल बता रहे भैया? 4MCNG ना, 4MCNG है।
इस गाड़ी पे सर बहुत शर्मिंदा होते हैं।
क्यों?
गाड़ी की इतनी डिमांड है ना। मैंने तो आपको ऑफर चाहिए थी यार, आप खाली लेवल में आते भी नहीं होते। तो
हमें चाहिए, हमें मजबूरी है, हमें कंपनी में लगाना है।
सर कंपनी वाले ना मजबूरी का फायदा उठाते हैं। नहीं, 7,000 के साथ मैंने खुद ने दिया, पता क्या बोल रहे हैं उससे?
पहले मुझे आराम से बोले गाड़ी सुनवाई। मुझे
ये नहीं किया सर, ऑन रोड
1174
शोरूम हो गया। ये TCS जो गवर्नमेंट को जाएगा, ITR होगी तो 1% लगता है, और नहीं होगी तो 5% लगेगा। 2 साल की ITR चाहिए मुझे। ये रोड टैक्स हो गया, ये इंश्योरेंस हो गया, ये ऑटो कार्ड हो गया। 1174 की है। अब अगर आपको इस महीने में गाड़ी चाहिए ना, तो आपको 12,44,000 की पड़ेगी गाड़ी।
हाँ, हिसाब सिंपल है, लेकिन ये बात सिंपल नहीं है, क्योंकि जिस गाड़ी की कीमत 11,74,140 रुपए है, उसे खरीदने के लिए हमसे कहा गया कि आपको 12,44,000 रुपए देने पड़ेंगे। अगर गाड़ी इसी महीने चाहिए तो, यानी 70,000 रुपए ज्यादा। लेकिन ये 70,000 रुपए आखिर ग्राहक से किस बात के वसूले जा रहे हैं?
कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है?
70। और जो दूसरी गाड़ी बोल रहे हो, वो कह रहे हैं कि 2-3 महीने में थोड़ा रूटीन चेंज हो जाएगा तो 50 तक में दे देंगे, मतलब 60 तक।
कौन सी गाड़ी की बात कर रहे थे?
आर्टिका।
ये किसका बता रहे हो फिर आप?
ये आर्टिका का ही बता रहा हूँ मैं।
आर्टिका ये भी है ना?
आर्टिका ये भी है। टूरन CNG बोलते हैं, कमर्शियल व्हीकल को ना टूरन CNG बोलते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड वगैरह लगा होता है।
हाँ,
80 किलोमीटर वाला बस।
हाँ,
ये ऑन रोड तो ये कर रही है, ब्लैक में मिल गया ना, ये बात बता रहा हूँ मैं। यही बात मैं फोन पर बता रहा था सर को, ब्लैक में गाड़ी मिली है एक तरीके से।
नहीं नहीं, बात मेरे छोटा भाई आता, मुझे सब सबसे नहीं, मुझे ही करना था कि मुझे हर चीज समझाइए आप।
सर ये गाड़ी की तो ऑन रोड प्राइस ये होगी।
हाँ, 11,74,000।
ठीक है।
हाँ,
ये कंपनी आपको गाड़ी जल्दी देने के लिए ना 70,000 रुपये एक्स्ट्रा पे ले रही है।
मारुति सुजुकी के फरीदाबाद में चल रहे इस शोरूम का स्टाफ खुद कह रहा है कि गाड़ी ब्लैक में मिल रही है, यानी इस शोरूम में ब्लैक कार नामा हो रहा है। सीधे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि कार बेचने में धांधली की जा रही है। अब इस ब्लैक मनी का पेमेंट प्लान भी समझ लीजिए।
तो ये पेमेंट हमें कैसे करना है?
70,000 रुपये जो आप दोगे ना, एक आप हमें कैश जमा करवाओगे, मैं आपके सामने ही कैश जमा करूँगा, पर उसकी आपको कोई रिसिप्ट नहीं मिलेगी।
अच्छा।
इसके अलावा सारी रिसिप्ट मिलेगी, बस 70,000 की रिसिप्ट मिलेगी।
तो ये गाड़ी कब तक दे दोगे
आप? ये गाड़ी मैं आपको महीने के एंड तक दे दूंगा।
इस महीने ना?
इस महीने में।
मैंने 2 तारीख पहले दे दोगे आप हमें?
2 तारीख।
2 अगस्त ना?
हाँ, 2 अगस्त जुलाई।
सॉरी, 2 जुलाई।
उससे पहले तो मैं आपको इस महीने में तो गाड़ी 28-29 तारीख तक दे दूंगा।
मारुति सुजुकी का कार बेचने का सिंपल प्लान आपने समझ लिया? पहला प्लान ये है कि अगर आपको कार जल्दी चाहिए तो 70,000 रुपए ज्यादा लगेंगे, और इस 70,000 रुपए की कोई रसीद नहीं मिलेगी, यानी कोई सबूत नहीं मिलेगा, ये ब्लैक मनी होगी। हमारी बात 15 जून को हुई और शोरूम से हमें भरोसा दिया गया कि 29 जून तक आपको एर्टिगा मिल जाएगी, यानी जिस कार के लिए वेटिंग टाइम 8 महीने से लेकर 1 साल तक है, वो कार हमें 15 दिनों में देने का वादा हो चुका, और इसके लिए हमसे मांगी गई 70,000 रुपए की रिश्वत।
वैसे कितना वेटिंग चल रहा है गाड़ी का?
वैसे महीने, सर मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। ये गाड़ी ऑन डिमांड बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत है, क्योंकि कमाई अच्छी होती है इससे।
हाँ,
ठीक है, आठ महीने अभी मैं बुकिंग उठाता हूँ, वेटिंग कोर्ट बताते हैं, आठ मंथ की वेटिंग पर मैं बुकिंग उठा लूँ।
मारुति सुजुकी के इस शोरूम में कैसे वेटिंग स्कैम हो रहा है, हमारी पड़ताल में आपको ये भी पता चलेगा। लेकिन पहले जरा ब्लैक कारनामे की कहानी पूरी हो जाए, क्योंकि सिर्फ फरीदाबाद नहीं, दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक कार बेचने के नाम पर मारुति के शोरूम में धांधली का खुला खेल चल रहा है। 16 जून 2023, मोहन नगर, गाजियाबाद। मारुति सुजुकी का शोरूम टीआर सोने मोटर। मैनेजर नया है, जगह नहीं है, लेकिन शोरूम उसी कंपनी का है। यहाँ भी मारुति सुजुकी की कारें बिकती हैं, और हम दो लोग गाजियाबाद के इस बड़े शोरूम में जिस शख्स के सामने बैठे हैं, उसका नाम मोनू सैनी है। मोनू के हाथ में भी कलम है और सफेद कागज पर ये हमें कार खरीदने का फॉर्मूला बता रहे हैं। जब आप इनकी बात सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि गाजियाबाद का मारुति शोरूम धांधली में फरीदाबाद को भी पीछे छोड़ चुका है।
सर, आपने अर्टिका लेनी है?
अर्टिका दो चाहिए कमर्शियल।
नंबर क्या का मिलेगा?
नोएडा।
आधार कार्ड मिलेगा? क्या मिलेगा नोएडा का? सब कुछ मिलेगा। कंपनी नेम पे नहीं है? कंपनी नेम पे नहीं है,
ये कंपनी नेम पे खुला है।
इसके बाद शोरूम का ये स्टाफ मोबाइल पर कुछ सर्च करने लगता है। उसके बाद हमने बात आगे बढ़ाई, रेट, ब्लैक मनी, लोन और कार के वेटिंग टाइम के बारे में खुलकर बात होने लगी।
टोटल पड़ रहा 12,25,000, इसमें हम 4,00,000 रुपये डाउन पेमेंट कर देंगे। तो वैसे आपके यहाँ कितना वेटिंग चल रहा है अभी?
सर वेटिंग में सेम है, हर जगह वही दबा रहे हैं वेटिंग में। अरे सर, सेम ही होता है, मारुति एक ही होगा, लेकिन गाड़ी मिलेगी आपको तरीके से बता दिया। और लोन का क्या रहेगा? 4,00,000 का लोन लेंगे आप?
हाँ,
12,25,000 माइनस
ये गाड़ी मुझे डिलीवर कब तक करेंगे?
डिलीवर मिल जाएगी, लेकिन इसमें कंडीशन है, गाड़ी थोड़ी महंगी पड़ेगी। ये पड़ेगी टोटल 13,05,000 रुपए की।
दोनों गाड़ी का ना?
एक गाड़ी की।
कितना ऊपर हो गया?
लगभग
80,000 रुपये बताया। सत्तर बताया था ना?
70,000।
आप 80 बता रहे हैं।
ये 80,000 धांधली की डिमांड है। ये 80,000 एक तरह से कार जल्दी देने की कीमत है, या समझिए रिश्वत है। और रिश्वत की रसीद नहीं होती, कोई हिसाब नहीं होता।
ये तो मुझे 80,000 देना एक्स्ट्रा मुझे, ये कैसे देना है?
ये कैश जाएगा, कोई रिकॉर्ड नहीं होगा।
अच्छा,
कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे।
कब तक गाड़ी डिलीवर देंगे
आप बताओ? लोन का हो जाएगा, कल ऑप्शन मिलेगा।
देखिए, हमारे पास सारी व्यवस्था है, मेरा अपना बंदा PNB का है, लोन एक 3-4 दिन ज्यादा नहीं।
आप बुकिंग अमाउंट देखिए, 3-4 हो जाएगा, नंबर लगे मतलब नंबर लगाएंगे उस दिन का नंबर
पक्का ना, ये गारंटी आपको देना पड़ेगा।
आप एक काम करो, मुझे ऊपर के पास लेके जाओ, पूरे पेमेंट लेके जाओ, मैं आजकल का गाड़ी बिल करा दूंगा। अभी देखो मेरे पे गाड़ी, एक दो गाड़ियां हैं। अगर आप कहेंगे कि मैं 4 दिन बाद आऊंगा, 4 दिन की छोटे में है, बाकी है कि नहीं चाह रहे?
नहीं, देखिए आज फ्राइडे है ना, हम सैटरडे को सारा काम करते हैं टोटल। सैटरडे हमारा सब लोगों का काम करते हैं।
कोई बात नहीं, फ्राइडे कल ही आ गया,
कल ही की बात,
कल आ जाना,
कल ही की बात।
इस बातचीत को सुनने के बाद आप हैरान हुए या नहीं? सोचिए, मारुति सुजुकी की जिस कार के लिए शोरूम में 10 से 12 महीने की वेटिंग चल रही है, ग्राहकों को 1 साल तक इंतजार करना पड़ रहा है। वो कार गाजियाबाद के मोहन नगर का शोरूम सिर्फ एक दिन में हमें देने की गारंटी दे रहा है, सिर्फ एक दिन में। हमने एक बार फिर से पूछा कि एक दिन में वाकई मिल जाएगा क्या? 80,000 रुपए की रिश्वत में थोड़ी छूट नहीं मिलेगी? इन सवालों के जवाब काला कारोबार करने वालों के कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकते हैं।
ये जो ऊपर से बताया, कुछ कम कर दो भाई,
कितना कुछ
देख लो,
ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ छोटा मोटा अमाउंट दे जो गाड़ियाँ है मैं उसे होल्ड कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
होल्ड तो सुबह 10 बजे कलम करा हमसे टड्डे कोई गाड़ी का काम करते हैं, विश्वकर्मा भगवान को मानते हैं हम लोग, इसको 80,000 दिया था उसको कुछ नहीं करा दो।
चलो मैं कल बात कर लूँगा, आप आएंगे
हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं।
नहीं नहीं कोई भाई साहब
हम नीडी है,
मैं भी आगे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि आप नीडी हो तो मैं आपको धर के काट दूँ, ऐसा भी नहीं है।
आपको किससे
मुझे फिर सीधे से बात करनी पड़ेगी, मैं कल आप आ जाओ मैं कर लूँगा, ठीक है करा दूंगा, ठीक है ना। आप ऐसे करो जैसे आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हो ऐसे ही मैं आगे रिक्वेस्ट करूँगा, ऐसा नहीं है कि ये मैं ले रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ तो मैं आपको कंपनी से बाहर जाकर बात करता, एक कोने में जाकर बात करता, आपको वो चीज होती है। छोटे बैठ के मार रहा हूँ सबको पता है, छोटे बैठ के मार रहा हूँ सबको पता है।
कार कंपनी के इस काले खेल के बारे में सबको सब पता है, तभी तो सुना नहीं आपने इन्होंने क्या कहा।
छोटे बैठ के मार रहा हूँ सबको पता है,
इन्होंने कहा चौड़े में बैठकर मांग रहे हैं क्या रिश्वत, एक दिन में कार देने की अवैध रकम, बस शर्त यह है कि 80,000 रुपए ब्लैक में चाहिए जिसका आपको कोई सबूत नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जुबान पर भरोसे से काम चलाना होगा। शोरूम के सीनियर स्टाफ ने हमें ये भी बताया कि मार्केट में इसी तरह ब्लैक में गाड़ियां बेची जा रही हैं।
बुकिंग जो भी आपने देना मैक्सिमम दे दो तो दे देना,
तो भाई कल तू आ जाइए
और जो ऊपर का अमाउंट है वो कैसे
कुछ नहीं होगा, कुछ
नहीं कोई प्रूफ नहीं है, किसी से पता करना गाड़ी कितनी बिक रही है, गाड़ी इसी तरीके से बिक रही है गाड़ी मार्केट में।
फरीदाबाद के मारुति शोरूम में एक एर्टिगा कार जल्दी दिलाने के नाम पर हमसे 70,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई और गाजियाबाद में 80,000 रुपए मांगे गए। फरीदाबाद में 13 दिन तो गाजियाबाद में एक ही दिन में हमें एक एर्टिगा कार देने का भरोसा दिया गया। यहां एक बार फिर हम आपको बता देना चाहते हैं कि मारुति सुजुकी के तमाम शोरूम में एर्टिगा कार का वेटिंग टाइम 10 से 12 महीने तक का है, लेकिन हमारी पड़ताल में जो बात निकलकर सामने आई वो ये है कि अगर आप 70,000 से 80,000 रुपए तक रिश्वत देते हैं तो आपको एक हफ्ते से दो हफ्ते के अंदर गाड़ी मिल सकती है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।
दिल्ली देश की राजधानी है, प्रधानमंत्री से लेकर परिवहन मंत्री तक सभी यहीं रहते हैं, बड़े बड़े संवैधानिक और प्रशासनिक मुख्यालय यहीं हैं, लेकिन दिल्ली में मारुति कार्स बेचने के नाम पर तमाम शोरूम्स ग्राहकों को या तो लूट रहे हैं या वेटिंग के नाम पर उन्हें लटका रहे हैं। ऑपरेशन कार नामा का पार्ट वन इसी की गवाही दे रहा है, जिसे देखकर मुझे क्या समझ में आया ये मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं। वेटिंग पीरियड वाली कारें जल्दी डिलीवर करने के लिए 70-80 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, ये पैसा ब्लैक में लिया जा रहा है, यानी ये पैसा कैश में लिया जा रहा है जिसकी कोई रसीद तक काटी नहीं जाती। कार शोरूम्स में वेटिंग पीरियड वाली कारें मौजूद रहती हैं जिन्हें ब्लैक में ज्यादा पैसे लेकर बेचने के मकसद से ही रखा जाता है। जी न्यूज के खुफिया कैमरे पर गाजियाबाद में स्थित मारुति शोरूम के स्टाफ ने खुद कबूल किया है कि मार्केट में वेटिंग वाली सारी गाड़ियां ऐसे ही बिक रही हैं। कार शोरूम्स का स्टाफ ऐसे ग्राहकों की तलाश में रहता है जिन्हें कार खरीदने की जल्दी होती है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि हमने तो आपको सिर्फ दो ही कार शोरूम्स के एग्जाम्पल दिखाए हैं, इससे ये तो साबित नहीं होता कि हर कार शोरूम में ये कारनामा चल रहा होगा। बात सही भी है, इसीलिए जी न्यूज की टीम दिल्ली के दिलशाद गार्डन इलाके में मारुति सुजुकी के एक और शोरूम में पहुंची। तो क्या खुलासा हुआ ये आपको ऑपरेशन कारनामा के पार्ट टू में हम दिखाते हैं।
19 जून 2023 दिलशाद गार्डन दिल्ली, मारुति सुजुकी का शोरूम फेयर डील व्हील्स प्राइवेट लिमिटेड। टेबल पर पेपर है और हाथ में कलम लेकर कार क्रांति करने चले इस शख्स का नाम आशीष है। शाम 4:35 पर हमारी बातचीत शुरू हुई। मारुति सुजुकी के दिल्ली स्थित इस शोरूम में भी बात एर्टिगा कार को लेकर थी।
सब की कोई दिक्कत नहीं। हाँ वैसे आर्टिका पे वेटिंग कितना चल रहा है? तेज बोलें तो सुनाई कम।
एक साल की
वेटिंग है तो सर कितने दिन में दे देंगे आप? सर जितना जल्दी दे दो, तो फर्स्ट वीक में दे दो। अगर
सवाल का जवाब देने से पहले आशीष के मोबाइल पर एक कॉल आता है और हमारी बातचीत में एक छोटा सा ब्रेक लग जाता है। लेकिन बातचीत के पहले 30 सेकंड में हमें शक हुआ कि मारुति के इस शोरूम में भी खेला हो रहा है और आगे की बातचीत में हमारा शक सही साबित हुआ।
ये जो गाड़ी मिलेगी ऑन रोड पे मिलेगी, आपको इसे हटाने दो। एक बात बताओ, या तो मेरी जेब में जा रहा हूँ, आगे मैं कह सकता हूँ हमारी मेरी जेब में जा रहा हूँ। इस टाइम इस गाड़ी की इतनी डिमांड हो रही है, गाड़ी पीछे से
है। आप मुझे कब तक दे देंगे गाड़ी?
दे देंगे हफ्ते भर में, लोन कर लोन के लिए
लोन में करा लूंगा।
तो अब तक बात ये हुई कि शोरूम के स्टाफ ने हमसे वादा किया कि वो 7 दिन में हमें एर्टिगा की कार दे देंगे, लेकिन अभी रेट फाइनल नहीं हुआ। कौन सा रेट? वही ब्लैक वाला रेट, रिश्वत वाला रेट।
इसको कुछ कम कराइए ना सर, ये इसको एसेसरी कुछ कम कराइए।
देख लूंगा जो 2-4 हजार वो और कम।
और क्या क्या
ऊपर जो लगेगा वो लगेगा?
ऊपर क्या लगेगा
वो कंफर्म करना पड़ेगा, अभी कोई भी कोई गाड़ी है नहीं, अभी जब आएगी तभी कंफर्म होगा।
फिर भी कुछ कम ला जाए,
लेने को तो लोग 80 हजार रुपये भी ले रहे हैं, 70 हजार भी ले रहे हैं। मैं आपको वो बताऊंगा ना जो जाएगा,
कुछ
आपकी प्रॉफिट अलाउ कर रही है, मैं कह दूंगा 1 लाख रुपये।
सर देखिए मेरी मजबूरी फंसी हुई है,
मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अभी इसलिए कह रहा हूँ भाई साहब, आपकी मजबूरी फंसी हुई है, मैं मजबूरी का फायदा नहीं उठा सकता हूँ किसका।
जिन्हें आम ग्राहकों की मजबूरी से मतलब नहीं होता, उन्हें हमारी मजबूरी का फायदा इसलिए नहीं उठाना क्योंकि वो समझते हैं कि इस ग्राहक से उन्हें रिश्वत मिलने वाली है। लेकिन कितनी? 70 हजार या 80 हजार? फाइनल रेट क्या है?
एक गाड़ी पर 80 हजार,
एक गाड़ी पर 80 हजार।
जी इस टाइम बहुत बुरी हालत है, आप हमारे यहाँ छोड़ो गाजियाबाद से आए हो ना, मोहन नगर से छोड़ो, कई मत बताना कुछ डील ले रखी है, डील लेना और उनसे पूछना ब्लैक कितना चल रहा है।
जो
भी उनके पास खड़ी है 91 हजार रुपये ऊपर मारे।
ये तो मुझे ये बताइए कि जो पैसा ये ब्लैक वाला मुझे देना होगा वो कैसे देना होगा?
कैश।
कहते ही फिर से स्टाफ के मोबाइल पर कॉल आता है। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि फाइनल रेट क्या है, लेकिन इन्होंने जो संकेत दिए उससे साफ था कि कार पर रिश्वत की रकम दिलशाद गार्डन के इस शोरूम में 70 हजार से ज्यादा ही रहने वाली है।
ये तो बता दीजिए कि फिर फाइनल क्या पड़ेगा गाड़ी का रेट मुझे?
देखो ये तो ऑन रोड है।
हाँ ऑन रोड हो गया आपको 12 लाख 20 हजार।
देखो इंश्योरेंस जो आएगा 40 हजार के आसपास
आएगा,
39 हजार 900 रुपये,
5 साल का, 1 साल का
कमीशन में, 1 साल का, ठीक है। आपके 2-2.5 हजार के बचिए, 2-3 हजार के यहाँ बचते हैं, 8 हजार रुपये कम होंगे, 5 साल 12 लाख 22 हजार के आसपास जाएगा।
और ब्लैक में जो दूंगा जोड़ के कितना हो जाएगा
है?
जो ब्लैक में हम देंगे उसको जो
अंदाजे
70 से कम ही होगा या ज्यादा हो जाएगा?
अब देखो मेरे पास गाड़ी है नहीं, मेरे पास आनी नहीं है, वही मैं देख रहा हूँ, तो कोई भी नहीं है सर, आज मेरे पास आनी नहीं है, नहीं ले जा रहा।
पर एक तो गारंटी लेंगे ना, हमारी हम पैसा दे भी दे ब्लैक का आपको तो गाड़ी तो मिल जाएगी हमने खपते में, उसकी गारंटी लेनी पड़ेगी भाई साहब, तो फिर मेरी आगे बात खराब होगी, बहुत भयानक नुकसान होगा मुझे।
मैं जो गारंटी ले रहा हूँ बोल रहा हूँ।
दिल्ली के दिलशाद गार्डन में मारुति सुजुकी के शोरूम की तरफ से हमें 7 दिन में एर्टिगा कार देने की गारंटी दी गई और रिश्वत की रकम 70 से 80 हजार रुपए बताई गई। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।
कार जल्दी लेनी है तो रिश्वत देनी पड़ेगी। वेटिंग पीरियड वाली गाड़ियों पर मारुति के शोरूम्स वालों का जवाब एकदम क्लियर है। और ये रिश्वतखोरी कितने खुलेआम चल रही है ये तो आपने देख ही लिया है और उम्मीद है कि आप समझ भी गए होंगे। अगर 1 नंबर से गाड़ी चाहिए तो 1 साल लगेगा, लेकिन अगर 2 नंबर से चाहिए तो 10-15 दिन में गाड़ी की डिलीवरी की फुल गारंटी। गाड़ी की एक्चुअल कीमत में भले ही बारगेनिंग हो जाए, लेकिन गाड़ी को जल्दी लेने के लिए जो पैसा ब्लैक में देना है उसमें कोई बार्गेनिंग नहीं। लेकिन अगर ब्लैक में डील पक्की हो गई तो फिर गाड़ी की जल्द से जल्द डिलीवरी की गारंटी शोरूम वालों की। और ये कारनामा मारुति के किसी एक शोरूम में चल रहा हो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अलग अलग शहर, अलग अलग शोरूम्स और कारनामा एक। मारुति की वेटिंग पीरियड वाली कारों को शोरूम्स वालों ने ब्लैक में पैसा कमाने का गोल्डन पीरियड बना लिया है। कार शोरूम्स के इस ब्लैक कारनामे का पार्ट 3 तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है।
23 जून 2023 सहारनपुर उत्तर प्रदेश, मारुति सुजुकी का शोरूम तान्या मोटर्स। दोपहर 12 बजे का समय था और हम सहारनपुर के तान्या मोटर्स शोरूम में सेल्स मैनेजर के सामने बैठे थे। काली टी शर्ट में दिख रहे ये जनाब हाथ में कलम लेकर तैयार थे समझाने के लिए और हम भी तैयार थे समझने के लिए। शुरुआत हमने की, पूछा एर्टिगा चाहिए, अब जवाब आना था।
कमर्शियल नंबर क्यों थी पर्सनल? कमर्शियल है वो एर्टिगा कमर्शियल।
बातचीत के दौरान एर्टिगा VX5 CNG की ऑन रोड कीमत हमें 12,30,000 रुपए बताई गई। अब हमें ये पता लगाना था कि सहारनपुर के इस शोरूम में कार बेचते समय तय नियम का पालन किया जाता है या नियम की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसके लिए कार के वेटिंग पीरियड पर सवाल करना जरूरी था।
कितना वेटिंग कितना कितने दिन देंगे गाड़ी? 3 दिन मिल जाएगा। इतनी दूर से आपको ऐसे बढ़ाने में चमत्कार वाली बात है? इतनी दूर नहीं, मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ पता आपको?
बातचीत के दौरान सेल्स मैनेजर ने एक शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द क्या था? प्रीमियम। गाड़ियों के शोरूम में प्रीमियम ग्राहक उन्हें कहा जाता है जो वेटिंग में नहीं सेटिंग में यकीन रखते हैं, जिनसे जल्दी गाड़ी देने के नाम पर रिश्वत ली जाती है और वो खुशी खुशी दे देते हैं।
मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मोरा, दिल्ली के बगल में ही है, मतलब देहरादून सब जगह घूमते हो, गाड़ी नहीं मिलती सब जगह। मैंने कि अगर कोई प्रीमियम ले भी रहा ना तो फिर भी डेढ़ मिनट में दे रहा
है। हम प्रीमियम ले रहे हैं 19 समय देने से, हम तो तुरंत आपका लौट रहे हैं। गाड़ी 3 दिन का मिलने का न्यू डेट होते हैं, जल्दी करनी है जल्दी।
प्रीमियम कितना देना होगा
जो आपको मैंने कल बताया था? बाकी तो मांगते कम, पता नहीं कैसे हैं।
क्या क्या मांग लेते भाई? किडनी को नहीं मांग लेते? किडनी भी नहीं मांगे तो एक अलग बात
है। आपने जब 2 गाड़ी की बात की ना, मैंने आपको बंदा दी
2 गाड़ी के 1,00,000 रुपये
वरना 60,000 के मिनिमम निकल आते हैं।
वो भी अमाउंट किसकी है? थोड़ी
ऐड नहीं है, वो ऐड नहीं होती।
समझ गया हो तो
कोई 12,000 मान लो,
हमें तो देना है ना। अच्छा, आप एक गाड़ी का लिख रहे हैं?
एक गाड़ी
तो ये हमें कैश देना होगा?
ये कैश जाएगा, कोई रसीद होती ना।
प्रीमियम कस्टमर के लिए ऑन रोड 12,30,000 की गाड़ी का रेट अब 12,80,000 रुपए हो गया। अगर सिर्फ एक गाड़ी लेने की बात करते तो हमसे 60,000 रुपए की रिश्वत ली जाती, लेकिन हमने 2 एर्टिगा खरीदने की पेशकश की, इसलिए एक कार पर 50,000 रुपए रिश्वत की रकम तय हुई। पड़ताल के दौरान हम जितने भी शोरूम गए और जहां भी प्रीमियम डील हुई, वहां एक कार 1 से लेकर 15 दिन के अंदर देने का वादा तो किया गया, लेकिन दूसरी कार जल्द से जल्द देने के लिए कोई भी शोरूम तैयार नहीं हुआ सिवाय सहारनपुर के। सहारनपुर में मारुति के इस शोरूम से तो हमें सिर्फ 3 दिन के अंदर दोनों गाड़ियां देने की गारंटी दी गई। यहां तक कि सेल्स मैनेजर ने जुबान दी कि अगर हमने 1 दिन में पेमेंट कर दिया तो वो भी एक ही दिन में दोनों गाड़ियां दे देंगे।
गाड़ी 3 दिन दे तो कभी नहीं दे देंगे ना? 3 दिन में पक्का गाड़ी मिल जाएगी ना?
30 तारीख हो गई ना,
इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं?
मुझे पेमेंट से मतलब है, अगर मुझे आज पेमेंट देते हैं ना आज गाड़ी देने, मुझे मतलब नहीं होता पेमेंट से मतलब।
आज क्या तारीख है?
मेरे अकाउंट में पैसा चाहिए।
हम तो वाला ब्लैक वाला, यही वाला दूसरा वाला
शुक्रवार ठीक रहेगा।
इसी शोरूम में हमने मारुति की ब्रेजा कार के बारे में भी बात की। पता चला इस कार को खरीदने के लिए 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है।
वीजा का भी चल रहा है, वीजा का 1 साल का वेटिंग है सर, वीजा का 8000 का सामान कार जाती है, खुला न्यू चल रहा वीजा को भी जी मुखा फर्स्ट मॉडल से सेकंड मॉडल से नहीं आती, सेकंड टॉप पे नहीं आती, उसका सिग्मा है, जैसे सिग्मा है ना उसमें बेस मॉडल का बेस से चल रहा है।
मारुति के ब्रेजा कार अगर जल्द चाहिए तो 50,000 रुपए की रिश्वत देनी होगी। कार बेचने वालों के लहजे में कहें तो 50,000 का प्रीमियम देना होगा और 60,000 रुपए एसेसरीज पे खर्च करने होंगे, यानी आपको ना चाहते हुए भी शोरूम का सामान कार में लगवाना ही होगा। और ये सब सिर्फ मारुति सुजुकी के शोरूम में हो रहा है ऐसा नहीं है, कार निर्माता कंपनी हुंडई के कई शोरूम में भी ग्राहकों से छल हो रहा है। July 4, 2023 रांची झारखंड, हुंडई का शोरूम जेपी हुंडई। हुंडई के इस शोरूम में हमारी पहचान एक ग्राहक की थी और शोरूम के सेल्स मैनेजर से हमारी बातचीत हुंडई की कार क्रेटा ई खरीदने को लेकर हो रही थी।
कितना डाउन पेमेंट की जरूरत है?
5 लाख तक कर रहे
हैं।
5 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 5,73,000 रुपए लोन अमाउंट, कुल मिलाकर हुआ 10,73,000 रुपए। अब इस पर एसेसरीज के चार्ज और प्रीमियम वाली रिश्वत अलग से। अब सवाल था गाड़ी मिलेगी कब और प्रीमियम डील के लिए यानी जल्दी गाड़ी देने की एवज में कितना एक्स्ट्रा देना होगा, मतलब ये कि कितनी रिश्वत देनी होगी।
बता दी कोई दिक्कत, बता दी
आप बता दी,
अरे बता दो यार क्या
लगभग कितना
भाई हमारे बड़े भाई
पूरा जानकारी जोर के बता दें टोटल 25 तो कितना होगा दोनों जोर के
12,86,000
ऑन रोड और वो 25,000 ड्रॉप होगा 25,000 कैसे करना हो कैश
कैश
देना हो
ये कितने लोग हैं हाँ कैसे आ रहे हैं ये कब देना होगा
डिलीवरी बाकी सारा प्रोसेस की आप टाइम लग जाते हैं
ठीक है
25,000 में कुछ बुला लो इक्विपमेंट कुछ लग जाए मैं भी आप ठीक करूँ
फिर बात करना होगा सर
बात करना होगा
देखिए ना सर आपके नाम से गाड़ी
ये तो अलग ही हो जाएगा तो 25,000
से वो अलग हो गया
अलग बात
है। कब तक गाड़ी दे दोगे?
8 तारीख से 8 से 10 तारीख।
हुंडई की जिस क्रेटा ई कार की वेटिंग करीब 4 महीने से भी ज्यादा है वो हमें 1 हफ्ते के अंदर दे दी जाएगी और रांची के इस शोरूम में जल्दी कार देने की कीमत है 25,000। अब एक और सवाल मेरे मन में आया, रिश्वत की ये रकम आखिर जाती कहाँ है?
25,000 जाता है लगता है
वो जाता है ओके बेसिकली क्या है कि कुछ हिस्सा मेरा भी रहा कुछ हिस्सा
अब आपको पता चल गया होगा कि शोरूम में कैसे प्रीमियम के नाम पर ग्राहकों से रिश्वत ली जाती है और रिश्वत की ये रकम किस किस्त में बढ़ती है। अभिषेक कुमार, जी मीडिया।
तो देख लिया आपने देश की सबसे बड़ी कार कंपनी और शायद सबसे पुरानी कंपनी मारुति सुजुकी के शोरूम्स में कैसा कारनामा चल रहा है, वेटिंग पीरियड वाली कारों को शोरूम्स वालों ने कैसे ब्लैक मनी कमाने का जरिया बना लिया है, मतलब रिश्वत दो और लंबी लंबी वेटिंग वाली कार हाथों हाथ ले लो वरना बुकिंग करके इंतजार करते रहो। कार बेचने वाली कंपनियों के इस खेल का पूरा सच हमने आपको दिखाया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। मारुति की कारें बेचने वाले शोरूम्स का स्टाफ खुलकर अपने इस कारनामे की गवाही देता है, वो भी बिना डरे, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सब मिले हुए हैं।
फरीदाबाद में मारुति सुजुकी के शोरूम टीसीएस ऑटो वर्ल्ड से हमें वेटिंग वाली धांधली का पता चला। वहां हमारे सामने बैठे सीनियर स्टाफ ने बताया कि जो प्रीमियम ग्राहक नहीं होते, यानी जो गाड़ी के लिए रिश्वत नहीं देते, उन्हें वेटिंग का बहाना बनाकर तारीख पर तारीख मिलती रहती है।
वैसे कितना वेटिंग चल रहा है गाड़ी का?
वैसे सर मैं बताता हूँ क्या चल रहा है। ये गाड़ी ऑन डिमांड बहुत ज्यादा है, खरीदने वाले बहुत है, क्योंकि कमाई अच्छी होती है इससे।
हाँ हाँ
ठीक है। 8 महीने अभी मैं बुकिंग उठाता हूँ, वेटिंग पर उठवाते हैं।
हाँ
8 मंथ की वेटिंग पर मैं बुकिंग उठा लूँ।
हाँ
ठीक है।
हाँ
उसके बाद जो हम ये डॉक्यूमेंट फिल करते हैं ना, उससे अप्रोक्सीमेट आइडिया लिखा होता है कि 8 महीने की वेटिंग चल रही है अप्रोक्सीमेट है। उसके बाद जैसे 8 महीने हो गया और आपने भैया फिर हम मेल कर देंगे, 1 महीने के बाद सर वेटिंग पीरियड बढ़ गया, 9 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, ऐसे चलता रहेगा, गाड़ी नहीं मिलेगी।
सुना आपने, मेल के जरिए ग्राहक को ये जनाब तारीख पर तारीख देते रहते हैं। बुक कराते समय जिस गाड़ी का वेटिंग टाइम 8 महीने का मिला था, उसे एक एक महीना करके आगे बढ़ाया जाता है। और इसके लिए करना क्या होता है? कस्टमर को सिर्फ एक ईमेल करना होता है, उन्हें बताना होता है कि 1 महीना वेटिंग पीरियड बढ़ गया। मारुति के शोरूम में आम ग्राहकों से ऐसे ही खेला जाता है, लेकिन जैसे ही हजारों की रिश्वत लेकर कोई प्रीमियम ग्राहक आता है तो उसे मनचाही गाड़ी तुरंत मिल जाती है। हमारी पड़ताल के दौरान एक और बात सामने आई, ज्यादातर शोरूम में आम ग्राहकों को रिश्वत वाली रकम के बारे में नहीं बताया जाता, इसके लिए रेफरेंस जरूरी है। अगर शोरूम के कर्मचारियों को ग्राहक पर भरोसा हो गया तभी प्रीमियम की पोल खुलती है, तभी ब्लैक में पैसे लेकर जल्दी गाड़ी देने की डील तय की जाती है। हमने भी कई शोरूम में रेफरेंस का इस्तेमाल किया था।
उन्होंने भैया को बता देना गाड़ी कैसे मिलेगी।
हाँ
गाड़ी कैसे मिलेगी बताइए ना आपको।
जो भैया ने आप ये सब
उन्होंने बता दिया है ना आपको।
हाँ बताया।
हाँ वो
मतलब मुझे पता वैसे ही मिलेगा।
ठीक है
बस बस आप अपने
नहीं बताऊंगा ना, मेरे को मैं एकदम फ्रंट पे कस्टमर को नहीं बता सकता, मैं आपको नहीं जान रहा हूँ ना। आप
आपकी लाइन का आदमी है, मतलब मेरी मजबूरी है।
आपने फोन करा था?
हाँ हाँ अभिषेक नाम है
एक्चुअली। किसने मिला?
राकेश जी ने, दोनों ने, जो कि मैंने गाड़ी ली थी ड्राइवर वो भी, तो हमारी कंपनी में गाड़ी चलाते हैं।
अब सवाल ये है कि क्या मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनी को ये पता नहीं है कि उसके शोरूम में कैसे वेटिंग के नाम पर आम ग्राहकों से चीटिंग की जा रही है? मारुति सुजुकी से लेकर हुंडई तक के शोरूम में जिस तरह से धांधली हो रही है, क्या इन कंपनियों को इस बारे में पता नहीं है? जिस तरह से जल्दी गाड़ी देने की एवज में रिश्वत ली जा रही है, जिस तरह से ईमानदार ग्राहकों के साथ धोखा हो रहा है, क्या इसकी जवाबदेही तय नहीं होनी चाहिए? अभिषेक कुमार, जी मीडिया।
ये खुलासा सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी सरप्राइजिंग है। सोचिए, देश की सबसे बड़ी और बहुत पुरानी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी और हुंडई के शोरूम्स में गाड़ियों की बिक्री में रिश्वत का कारनामा हो रहा है। रिश्वत देने वालों के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं और आम ग्राहकों के लिए लंबी वेटिंग। तो अगर आपने भी कार की बुकिंग करवाई हुई है और कार बेचने वाली कंपनी आपको वेटिंग का बहाना बनाकर बार बार तारीख पर तारीख दे रही है, तो समझ लीजिए कार शोरूम्स वाले आपके साथ धोखा कर रहे हैं। और जो कार आपको मिलनी चाहिए उसे रिश्वत लेकर किसी दूसरे को बेच रहे हैं। अगर आप भी कार कंपनियों के इसी कारनामे के शिकार हुए हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस बताते हुए अपना वीडियो हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कीजिए। मैं आपका वीडियो अपने शो में जरूर दिखाऊंगा। डीएनए के अगले विश्लेषण की शुरुआत से पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ली गई इन तस्वीरों में हमारी पृथ्वी बेहद खूबसूरत दिख रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया के किसी भी दूसरे ग्रह से उलट पृथ्वी पर जीवन है और उसकी सबसे बड़ी वजह है पृथ्वी में जल का तरल रूप में मौजूद होना। तस्वीर में जो नीला रंग दिख रहा है वो उसी पानी की वजह से है जो हमारी पृथ्वी पर समंदर के रूप में मौजूद है। लेकिन अगर मैं कहूं कि कुछ दिनों बाद आसमान से हमारी पृथ्वी नीली ना दिखकर हरी दिखने लगेगी तो आप चौंक जाएंगे। मैं भी चौंक गया था। आपको हैरान होना स्वाभाविक भी है क्योंकि हमने पानी को हमेशा नीले रंग से ही जोड़कर देखा। समंदरों का ख्याल आते ही हमारे जहन में साफ नीले पानी की तस्वीर तैरने लगती है, लेकिन अब समंदर का रंग बदल रहा है और सिर्फ रंग ही नहीं बदल रहा, हमारी दुनिया भी बदल रही है। इसीलिए डीएनए में अब हम क्लाइमेट चेंज के टाइम बॉम्ब का विश्लेषण करेंगे। और आज ये विश्लेषण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की तरफ से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर जो कुछ कहा गया है वो किसी टाइम बॉम्ब से कम खतरनाक नहीं है। एमआईटी की इस रिपोर्ट के अनुसार हमारे समंदर अपना रंग बदल रहे हैं और ये चिंता की बात है कि इस बदलाव की रफ्तार बेहद तेज है। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदरों का 56% हिस्सा नीले से हरा हो गया है, वो भी सिर्फ 20 वर्षों के अंदर। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी में कुल 70% से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं समंदरों का है और इन समंदरों का आधे से ज्यादा हिस्सा रंग बदल चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार पानी के बदले हुए रंग को आंखों से नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी ये बदलाव बेहद डरावना है और इसे आप हमारी ये रिपोर्ट देखकर आसानी से समझ सकते हैं।
वैज्ञानिकों के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से समुद्र की सतह पर फाइटोप्लैंक्टन नाम के जीवों की तादाद बेतहाशा बढ़ गई है। ये जीव छोटे पौधों की तरह दिखते हैं और इनमें पौधों की तरह ही क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल के हरे रंग की वजह से पानी की सतह भी हरी दिख रही है। वैज्ञानिकों के अनुसार समंदर का रंग बदलना खतरे की घंटी है क्योंकि फाइटोप्लैंक्टन के बढ़ने से समंदर में दूसरे समुद्री जीव जंतुओं के लिए जगह कम हो गई है और पानी में ऑक्सीजन की कमी होने से उनके लिए खतरा पैदा हो गया है।
समुद्र का जो रंग चेंज होना नीले से हरा, ये कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है कि इसका मैरिन लाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो जीव जंतु है समुद्र में रहने वाले उनके लाइफ पे क्या असर पड़ेगा, ये एक बहुत ही सीरियस इशू है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे आपके मैरिन लाइफ पे असर पड़ेगा तो ह्यूमन लाइफ पे असर पड़ना जरूर लाजमी है, क्योंकि ये एलगी है जिसको हम अपनी भाषा में एलगी बोलते हैं, हरा हरा, ये समुद्र जहां सनलिट वाटर सरफेस में ज्यादा पाई जाती है, तो सारी जितनी मैरिन लाइफ है वो तो एल्गी खा के सर्वाइव करती है। तो जब एल्गी की क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा तो मैरिन लाइफ पे फर्क पड़ेगा, मैरिन लाइफ पे फर्क पड़ेगा तो आम आदमी पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो मैरिन लाइफ पे ही डिपेंडेंट है। तो इसलिए तो प्रभाव तो आने वाले समय में बहुत खतरनाक दिखने वाले हैं।
सिर्फ समुद्री जीव ही नहीं, इंसानों की एक बड़ी आबादी भी मरीन लाइफ पर निर्भर है। खासकर कोस्टल एरियाज में बड़ी संख्या में लोग मछली पालन करते हैं और सी फूड के भरोसे रहते हैं, लेकिन समंदर में ऐसे डेड जोन बनने से मरीन लाइफ खत्म हो जाएगी और इससे इंसानों के लिए भी रोजी रोटी का खतरा पैदा हो जाएगा। वैसे समंदर के रंग में आए इस बदलाव के लिए अगर कोई वजह सबसे ज्यादा जिम्मेदार है तो वो हैं हम। ब्रिटेन के नेशनल ओशनग्राफी सेंटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंसान पूरे इकोसिस्टम को बेहद गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है और समंदर का नीले से हरा होना ये बताता है कि हमारा इकोसिस्टम बदल रहा है। ये कैसे बदल रहा है इसे हम आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाएंगे। आज हम एनर्जी के लिए जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस शामिल है, लेकिन इनको जलाने से हर वर्ष 4000 करोड़ टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। और आप ये जानकर हैरान होंगे कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का 25% से भी ज्यादा हिस्सा ये समंदर सोख लेते हैं। यानी दुनिया में जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होगी, समंदर उसे उतना ही ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे। इस कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से समंदर का पानी तेजी से गर्म हो रहा है। सतह का तापमान बढ़ने से समुद्र में आने वाले तूफान भी बढ़ रहे हैं।
जब आपका सी टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे पिछले कुछ सालों से हम सुन रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग है, पानी का एल नीनो आ गया। एल नीनो क्यों आया? वो समुद्र के पानी के टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से आया। तो उससे क्या हुआ कि कई जगह पे ड्रॉट आ गया, कई जगह पे बारिश आ गई, अनप्रडिक्टेबल रेन पैटर्न हो गए। अब जब कल रेन पैटर्न समुद्र का पानी का रंग टेम्परेचर बदला तो एल्गी फॉर्मेशन बदली, एल्गी फॉर्मेशन बदली तो इसके साथ साथ मैरिन लाइफ पे असर होना शुरू हो गया। तो आज जो मैरिन लाइफ है वो कल को सरवाइव करेगी या न करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया।
कोरल रीफ समेत बाकी मरीन लाइफ को भी नुकसान हो रहा है, जो आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को बुरी तरह प्रभावित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
हमारी ये रिपोर्ट देखकर आप हैरान ही नहीं हुए होंगे, परेशान भी हुए होंगे, और आपकी परेशानी लाजमी भी है। लेकिन अब आपको इसी तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी जरूर देखना चाहिए, और ये पहलू भी पहले से कम डरावना नहीं है, क्योंकि अब हम क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल वार्मिंग वाले हिस्से का विश्लेषण करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने बीती जुलाई को दुनिया का सबसे गर्म महीना बताया था और कहा था कि पिछले 1,20,000 वर्षों में इतनी गर्मी कभी नहीं पड़ी। नासा के मुताबिक दुनिया का औसत तापमान तेजी से बढ़ रहा है। विश्व का औसत तापमान पूरे वर्ष आमतौर पर 12 डिग्री सेल्सियस से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रहता है। जैसे वर्ष 1979 से 2000 के बीच इसका औसत 16.2 डिग्री सेल्सियस रहा था, लेकिन बीती 3 जुलाई को यह औसत तापमान 17.01 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसे ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे गर्म दिन बताया गया। इससे पहले सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड अगस्त 2016 में बना था और उस वक्त दुनिया का औसत तापमान 16.92 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। दरअसल ये एक ऐसा डरावना रिकॉर्ड है जिस पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि धरती का बढ़ता तापमान या ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए एक टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, और इसकी घड़ी किस तेजी से चल रही है इसे समझने के लिए हम आपको नासा की तरफ से जारी किया गया एक टाइम लैप्स वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में आप वर्ष 1884 से लेकर वर्ष 2021 तक के ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर को बदलते हुए देख सकते हैं। इस बढ़ते तापमान का सबसे बुरा असर अंटार्कटिका जैसे इलाकों पर पड़ रहा है। बीते वर्ष 18 मार्च को अंटार्कटिका में तापमान -12.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दरअसल मार्च के महीने में इस जगह पर सामान्य तापमान -50 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन इस बार ये -12.2 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। यानी इस हिसाब से इस जगह का तापमान सामान्य से लगभग 40 डिग्री तक बढ़ गया। इस बढ़े हुए तापमान की वजह से अंटार्कटिका के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। हो सकता है कि इन तस्वीरों को देखकर आपको लगे कि अंटार्कटिका में पिघलते ग्लेशियर और बर्फ के पहाड़ से आपका क्या लेना देना, लेकिन ऐसा नहीं है। तेजी से पिघलते ग्लेशियर पृथ्वी पर इंसान के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन सकते हैं। दरअसल अंटार्कटिका में दुनिया के पहाड़ों पर मौजूद सभी ग्लेशियरों की तुलना में 50 गुना ज्यादा बर्फ मौजूद है, और अगर ये ग्लेशियर पिघल गए तो इससे पृथ्वी का तापमान करीब 60 डिग्री तक बढ़ जाएगा। और आम इंसान इस गर्मी को आसानी से नहीं झेल पाएगा। जबकि इसका दूसरा विनाशकारी परिणाम यह होगा कि इससे दुनिया में पीने का शुद्ध पानी खत्म हो जाएगा और इंसान पीने के पानी के लिए भी जूझता रहेगा। पृथ्वी पर इस समय करीब 2 लाख ग्लेशियर हैं। ये प्राचीन काल से पृथ्वी पर बर्फ का एक विशाल भंडार बने हुए हैं। ऐसे में ग्लेशियर्स के पिघलने से जमीन पर रहने वाले दुनिया के उन लोगों पर असर पड़ता है जिनके लिए ग्लेशियर ही पानी का प्रमुख स्रोत है। जैसे हिमालय के ग्लेशियर आसपास की घाटियों में रहने वाले 25 करोड़ लोगों और कई नदियों को पानी मुहैया करवाते हैं जो करीब 165 करोड़ लोगों के लिए लाइफलाइन है। लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन पर रोक नहीं लगी और ग्लोबल वार्मिंग इसी तेजी से होती रही तो एशिया के ज्यादातर ग्लेशियर्स की एक तिहाई बर्फ पिघल सकती है। इससे एक तरफ तो पीने के पानी की दिक्कत पैदा होगी तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र के जल स्तर में भी इजाफा होगा। एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 1980 के बाद से समुद्र के जल स्तर में औसतन 9 इंच का अंतर आया है, यानी समुद्र का जल स्तर 9 इंच बढ़ गया है और इसकी बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। और अगर समुद्र का ये जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो अनुमान है कि अगले 60 वर्षों में अंडमान निकोबार, मालदीव, मुंबई, ये सारे के सारे क्षेत्र, पश्चिम भारत के कई समुद्री इलाके समुद्र में समा जाएंगे। जाहिर है हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो, इसलिए अभी भी वक्त है, संभल जाइए और पृथ्वी को बचाने के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो जरूर कीजिए। डीएनए में हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम देश में शोभा यात्राओं पर जारी हिंसा के एक नए पैटर्न का विश्लेषण करेंगे जिसका सबसे ताजा उदाहरण हरियाणा का नूह है।
पुलिस पर भी पत्थरबाजी यहां पर हुई, पुलिस को भी नहीं छोड़ा गया। और तीसरी तस्वीर दोपहर की तस्वीर, हिंसक भीड़ का तांडव यहां पर देखने को मिला।
चारों तरफ से गोलियां चल रही है, हम जिंदा मौत के मुंह से निकल के आए हैं। यहां पर मेवात के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने गोलियां चलाई हैं।
हरियाणा में हिंसा की आग किसने भड़काई?
गोलियां चलाई जा रही है, ये हिंदुस्तान में ही मिनी पाकिस्तान बना दिया है।
मेवात में माहौल किसने बिगाड़ा?
अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है, पत्थर तो बाहर चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से।
दंगाइयों का मास्टरमाइंड कौन?
ये गाड़ियां जल रही हैं, इन गाड़ियों से विस्फोटों की आवाज आ रही है और लगातार ये वही जगह थी जहां से शोभा यात्रा शुरू होनी थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पलटी हुई गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ना कुछ यहां पर धमाकों की जो आवाज है वो आ रही है। यहीं से थोड़ी दूर पे वो नल्हड़ मंदिर था जिस मंदिर से ये यात्रा शुरू होनी थी।
आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूह में रची गई। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया।
की तादाद में आए हैं और पत्थर बरसाए, हमने तो अपनी जान निठ बचाई है, गाड़ी हमारी तहस नहस कर दी। पर तीन घंटे हो गए।
कौन कौन लोग थे, कौन दिख रहे थे?
ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो इन्होंने झगड़ा किया। किस बात का झगड़ा किया? हमारा तो किसी से कोई विवाद ही नहीं है।
हम लोग उस यात्रा में भी नहीं थे?
नहीं थे, हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारा कोई यात्रा से ले।
अगर उनको उनकी कोई लड़ाई है, यात्रा वालों से लड़ाई है, यात्रा वालों पर विरोध करना था उनका, उनका आमदनी का विरोध करने का क्या मतलब है? पूरी गाड़ी फोड़ दी गई है, वो देखो तंडी हलवाई है, सारा फोड़ दिया गया है, आगे आगे सारी गाड़ी फोड़ दी गई है।
नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो गए। हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई।
हम तो एक दुकान में बैठ गए थे, एक दुकान में घुस के बैठ गए थे।
तो आप लोग कहाँ जा रहे थे?
हम अपने घर पे जा रहे थे, वापिस मंदिर से।
अचानक से वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगी।
अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है, पत्थर तो बाहर चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से।
हिंसक भीड़ ने सड़कों पर तांडव मचाया, छतों से गलियों से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी हमला।
ज्यादातर हिंसा में नुकसान उनका होता है जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता, जैसे आप और हम। आम जिंदगी जीने वाले लोग शांति से अपना जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन देश की शांति को भंग करने के लिए योजनाबद्ध हिंसा की एक बड़ी साजिश की जा रही है। हालांकि इसको अक्सर कुछ लोग स्वीकार नहीं करते हैं। आज हम डीएनए में हिंसा के इसी पैटर्न का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको हिंसा का एक चक्र दिखाना चाहते हैं। देश में निकलने वाली शोभा यात्राओं के दिन होने वाली हिंसा इसी सर्कल में घूमती रहती है। शोभा यात्राएं या झांकियां, हिंसा की योजना बनना, अफवाह फैलाना, फिर इसके बाद पथराव और अंत में हिंसा। देश में कहीं भी कोई शोभा यात्रा निकल रही हो, उस दिन के लिए खास योजना के तहत हिंसा का यही चक्र घूमता है। इसमें सबसे पहले शोभा यात्राओं का दिन निश्चित होता है। आमतौर पर धार्मिक त्योहारों के दिन निश्चित होते हैं, इसीलिए मुमकिन है उपद्रवियों ने इसका कोई खास कैलेंडर भी तैयार किया हो। इस दिन पर हिंसा कैसे होनी है, इसकी योजना तैयार की जाती है। इसके तहत पत्थर, हथियार और लोग कब और कैसे जुटाए जाने हैं, ये तय किया जाता है। इसके बाद शोभा यात्राओं से जुड़ी कोई अफवाह फैलाई जाती है, इसमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर कोई भी अफवाह तेजी से फैलती है। फिर इसके बाद शोभा यात्राओं के समय अफवाह के आधार पर पथराव होता है और फिर इसके बाद हिंसा शुरू हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक शोभा यात्राओं वाले दिन हिंसा का यही चक्र घूमता है। इसमें सैकड़ों जाने जाती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है और ना जाने कितने ही दिनों तक समुदायों के बीच नफरत घुली रहती है। नूह में भी यही हुआ। आपने नूह में हुई हिंसा की तस्वीरें देखी होंगी। कल नूह में हर साल की तरह ब्रजमंडल यात्रा निकाली जा रही थी। इसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। इसमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे। ये शोभा यात्रा एक सालाना कार्यक्रम के तहत हो रही थी, लेकिन इस शोभा यात्रा के लिए हिंसा का एक खास प्लान तैयार किया गया था। कल जैसे ही ये शोभा यात्रा निकली, इस पर पथराव शुरू हो गया और फिर इसके बाद उपद्रवियों ने नूह को हिंसा की आग में झोंक दिया। इस हिंसा से जुड़ी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसमें तोड़फोड़, आगजनी और यात्रा को टारगेट करके पथराव किया जा रहा है। नूह हिंसा का असर आसपास के कई इलाकों पर दिखाई दिया। पलवल, सोना, गुरुग्राम और फरीदाबाद भी शामिल हैं। हरियाणा के मैप पर आप ये पूरा क्षेत्र देख सकते हैं। नूह हिंसा को लेकर अब तक 16 FIR दर्ज हो चुकी हैं। इस हिंसा में अब तक 5 लोगों के मारे जाने की जानकारी है, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी और 2 आम नागरिक हैं। हिंसा में 60 लोग घायल भी हुए हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस की 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। ये हिंसा उसी पैटर्न पर हुई थी जिसका जिक्र हमने पहले किया था। ब्रजमंडल शोभा यात्रा का दिन निश्चित था, पुलिस प्रशासन से इसकी अनुमति भी ले ली गई थी, लेकिन उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव करने की प्लानिंग पहले से तैयार की थी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी माना है कि हिंसा की योजना पहले से तैयार की गई थी। छतों पर पत्थर और हथियार पहले से इकट्ठा किए गए थे।
जिस स्तर की ये हिंसा हुई है, ये अचानक भड़की हुई हिंसा तो नहीं है। और जहां तक मैं जानता हूं कि नूह में दोनों कम्युनिटियां लंबे समय से आपस में प्यार के साथ रहती हैं, उनका आपस में द्वेष भी नहीं। ये तो किसी ने जहर घोला है, किसी ने इंजीनियरिंग की है, किसी ने मास्टरमाइंड किया है। जिस स्तर पे एंट्री पे भी पत्थर रखे हुए हैं, छतों पर भी पत्थर रखे हुए हैं, हथियार भी हैं, गोलियां भी हैं, एकदम तो सामने आते भी हैं। और ये यात्रा कोई ऐसा नहीं है पहली बार निकली है, हर साल यात्रा निकलती है। यात्रा के साथ हर साल जितनी फोर्स होती है उतनी हमने आज भी दे रखी थी। तो मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। हम गहराई के साथ जांच करेंगे, तथ्यों से ही जांच करेंगे और एक एक उस व्यक्ति को जिसने प्रदेश की और देश की शांति को भंग करने का षड्यंत्र किया है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
योजना तैयार थी लेकिन उपद्रवियों को बस जरूरत थी एक ऐसी वजह की जिसे बताकर हिंसा को जनता की प्रतिक्रिया बताया जा सके। अक्सर देखा गया है कि देश का एक खास तबका शोभा यात्राओं पर होने वाले पथराव को आयोजकों की गलती बताता है। यहां भी यही करने की कोशिश की गई। उपद्रव के पहले दो स्टेप पूरे हो चुके थे, यानी शोभा यात्रा निकलनी तय थी और उपद्रव की योजना तैयार हो चुकी थी। अब तीसरे स्टेप में उपद्रवियों ने यह अफवाह फैलाई कि इस शोभा यात्रा में मोनू मानेसर नाम का व्यक्ति शामिल होगा। अब ये मोनू मानेसर कौन है? मोनू मानेसर एक कट्टर हिंदूवादी संगठन का सदस्य बताया जाता है, जिस पर गोरक्षा के नाम पर दो मुस्लिम युवकों की हत्या का आरोप है। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से ये अफवाह फैलाई गई कि मोनू मानेसर शोभा यात्रा में मौजूद है। दावा किया गया कि मोनू मानेसर यात्रा में शामिल है, लेकिन जब एक बार अफवाह फैली तो नूह और आसपास के इलाके के लोगों ने यात्रा पर पथराव की तैयारी कर ली। इसके बाद वही हुआ जो पहले से तय था। सबसे पहले ब्रजमंडल शोभा यात्रा पर पथराव हुआ, उसके बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई।
इस वक्त हम नूह के नल्लड़ के उसी महादेव मंदिर में खड़े हुए हैं जहां पर सोमवार को शाम को जब शोभा यात्रा निकाली जानी थी तो अचानक से यहां आए हुए श्रद्धालुओं पर पथराव और गोलीबारी शुरू हो गई। दरअसल अचानक से पथराव और गोलीबारी हुई, जिसके बाद पुलिस ने जब दंगाइयों को खदेड़ा तो वो इसी मंदिर के आसपास बनी हुई इन अरावली की पहाड़ियों पर चढ़ गए थे और एक के बाद एक वो फायरिंग जो है मंदिर में कर रहे थे। इस फायरिंग में अभी तक 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है, लेकिन हजारों श्रद्धालु जो कि दूर दूर से आए थे इस शोभा यात्रा का आयोजन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू संगठनों ने किया था। पुलिस को इस बात की जानकारी दी थी, पुलिस ने पूरा रूट बनाया था, लेकिन जो दंगाई थे उनको इस सोशल मीडिया के जरिए ये पता चला कि मोनू मानेसर जो कि जिसके बारे में बताया जाता है कि इसी इलाके के नासिर और जुनैद की हत्या का वो आरोपी था, उससे लोग आक्रोशित थे कि वो यहाँ आ सकता है और इसके लिए पहले से ही प्लानिंग की गई थी। जो हथियार है और जो पत्थर है वो इकट्ठे किए गए थे और कुछ लोग यहाँ के और बाकी बाहर से भीड़ को बुलाया गया था। दंगाइयों ने अचानक से पथराव किया, जो आगजनी हुई है जो भी ये दंगाई थे इन्होंने जिस तरीके से पथराव और गोलियां लोगों के ऊपर चलाई है उसके पीछे की असल वजह क्या है, क्या मोनू मानेसर के यहाँ पहुंचने की महज एक अफवाह की वजह से ये पूरा जो है उपद्रव इस पूरे इलाके में हुआ है या फिर इसके पीछे कोई सुनियोजित साजिश थी। फिलहाल जो है प्रशासन की प्राथमिकता है कि पूरे इलाके में अमन और शांति बहाल की जाए, जिसके लिए दोनों समुदाय के लोगों से लगातार मीटिंग से चल रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नूह, हरियाणा।
हिंसा के बाद अब नूह और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। हम आपको इस हिंसा की कुछ तस्वीरें और आज के हालात पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं।
तस्वीरें देख सकते हैं सामने, शायद ये तस्वीरें ना ही नूह ने कभी देखी होंगी, ना ही शायद ये हरियाणा ने कभी सोचा होगा कि कोई ऐसी धार्मिक यात्रा के बाद ऐसा पथराव होगा। और ये जलती हुई गाड़ियां, ये पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम नूह है जिसके सामने ये गाड़ियां जल रही हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हिंसा जो है कुछ ही घंटों में इतनी भयानक हुई है कि सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ इस समय पुलिस और भीड़ दिखाई दे रही है। आप ये तस्वीर, शायद ये तस्वीरें बहुत विचलित कर सकती हैं कि किस तरीके से जो पुलिस कर्मी है वो स्वयं से उठने की स्थिति में नहीं है। जब हम लोग नूह में घुस रहे थे कुछ लड़के जो बाइक पे थे, मुंह बांधे हुए थे, हाथों में डंडे लिए हुए थे, उन्होंने हमारे माइक को देख के गाड़ी का पीछा करने का प्रयास किया। जो पायलट था वो समझदार था, गाड़ी वहां से निकल के आई और आगे जहां हम पहुंचे वहां पे पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई थी। वो लड़के वहां से वापस हुए और अभी ऐसी भीड़ जो नू का आउटर इलाका है वहां पर देखने को मिल रही है, लगातार भीड़ जुट रही है।
मेरी गाड़ी तोड़ दी पुलिस ने, चार घंटे हो गए पुलिस ने, जो चार घंटे कोई आने को तैयार नहीं। हम यहाँ जिंदा भर जाए, कोई आग लगा दे, हमें जिंदा भी चला देगा तो कोई हमारे को सरकार बचाने को तैयार नहीं।
एक ऐसा मॉब था जिसने टारगेट करके यहाँ पर हिंसा भड़काई, यहाँ पर हिंसा की और हिंसा की ऐसी तस्वीरें जो वाकई में शर्मसार करेंगे हरियाणा को, हरियाणा की व्यवस्थाओं को। और जिस तरीके से ये पूरा एक कह सकते हैं कि एक प्लान तरीके से ये शायद सोच लिया गया था कि यात्रा शुरू होगी, पथराव किया जाएगा और उसके बाद ऐसी तस्वीरें जो है वो पूरे हरियाणा को देखने को मिलेंगी। ये सैकड़ों गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ये गाड़ियां जल रही हैं, इन गाड़ियों से विस्फोटों की आवाज आ रही है और लगातार ये वही जगह थी जहां से शोभा यात्रा शुरू होनी थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पलटी हुई गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ना कुछ यहां पर धमाकों की जो आवाज है वो आ रही है। यहीं से थोड़ी दूर पे वो नल्हड़ मंदिर था जिस मंदिर से ये यात्रा शुरू होनी थी। और अभी आप देखिए यहां पर जो पुलिस फोर्स है वो पुलिस फोर्स आगे की ओर बढ़ रहा है और वो धुएं का गुबार आप देखिए किस तरीके से ये भयानक धुएं का गुबार जो है वो आसमान को पूरी तरह से ढके हुए है। अभी ये तस्वीरें शायद वाकई में ये बहुत विचलित करने वाली तस्वीरें हैं और लगातार धमाकों की आवाजें जो है वो आ रही हैं। यहाँ पर पार्किंग में खड़ी हुई सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो मंदिर में अंदर शोभा यात्रा के लिए पहुंची हुई थी वो कहीं ना कहीं अब उनको प्रशासन बहुत सावधानी पूर्वक रेस्क्यू कर निकाल रहा है। और इस समय फिलहाल ये आप तस्वीरें देख सकते हैं भारी पुलिस बल के बीच, और पुलिस ने पूरा एक कहीं ना कहीं सर्किल बना रखा है दोनों तरफ से ताकि किसी भी तरीके से जो हिंसक भीड़ है वो किसी तरीके का अब हमला ना कर सके। आप देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से लोग जो पिछले कई घंटों से यहाँ पर फंसे हुए थे। माता जी कितने घंटे बाद निकले हैं आप लोग?
मेरा भाई मेरे साथ चाहिए को मतलब दो घंटा में निकल
क्या कितने
पांच घंटे हो गए।
तमाम गाड़ियां देख सकते हैं जो क्रेनों से लाकर इस थाना में खड़ी की जा रही हैं, ये वो सभी गाड़ियां हैं जो कल पूरे इस हिंसा में ये सैकड़ों गाड़ियां थी जिनमें तोड़ फोड़ की गई, गाड़ियां जला दी गई। और इस समय आप इस एम्बुलेंस को देख सकते हैं कि इस एम्बुलेंस से अभी भी जो धुआं है वो निकल रहा है।
नूह का यही वो तिरंगा चौक है जहां से होकर शोभा यात्रा निकाली जाने थी। जैसे ही मंदिर से आ रही शोभा यात्रा पर हमला हुआ तो जितने भी जो थी भीड़ थी वो अब इस सड़क पे आ गई थी। मेन रोड है नूह का और इस सड़क पे आने के बाद लगातार जितनी भी गाड़ियां मिल रही थी उनके ऊपर हमले हो रहे थे, लगातार पत्थरबाजी हो रही थी। ये आप अगर यहाँ से देखेंगे तो सड़क के दोनों तरफ ये करीब 2 से 3 किलोमीटर का ये पूरा फासला था जहाँ पर हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो सड़कों पर निकल चुकी थी। और न सिर्फ पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा था बल्कि जो गाड़ियाँ थी उनको भी निशाना बनाया जा रहा था। ये सड़क पे आप देख सकते हैं गाड़ियों को जलाने के निशान, टूटे हुए कांच और पत्थर दोनों तरफ सड़क के ये आपको नजर आएंगे।
ये सोना रोड जो है वहाँ की ये तस्वीरें हैं और यहाँ जितनी भी दुकानें थी इस पूरी लेन में उन सबको आग के हवाले किया गया। और इसी के साथ में यहाँ जो आप ये मकान देख पा रहे हैं वहाँ पर भी जो आग है उसमें लगाई गई है।
कईयों को चोट भी आई है, आँख वाँख पे सर्वर पे पत्थर लगा है।
तो क्या अंदर पहुँच गए थे लोग?
हाँ जी अंदर पहुँच गए थे, बहुत भीड़ थी,
अंदर पहुँच गए, थोड़ा पत्थर पड़े हैं जी, बहुत सारे, बहुत नुकसान हुआ।
कभी ऐसा इससे पहले कभी ऐसा हुआ?
नहीं, पहले नहीं हुआ, अब क्या हुआ जी?
आप क्या बता रहे हैं कि गोली भी चली है?
हाँ गोली चली, भटाकर बम गोली चले खूब रातू।
वो धाड़ गोली बारूद चली है, वहाँ से वहाँ तक बम चले हैं, पटाखे चले।
इन लोगों ने हमारे पर मारपीट करी है, मगर गेट तोड़ दियो, ये मंदिर का गेट भी तोड़ दिया है, यहाँ बाइक खड़ी थी वो भी तोड़ दिया इन लोगों ने।
और किसकी जलाई गई?
ये गुड़गामा के दो लड़के आए थे हमारे पास में थोड़ी देर ठहरने के लिए, इतने में आकर के इन लोगों ने हमको खूब पीटा, बाइक जला दी, तोड़ दी इन लोगों ने। अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाएं हम, प्रशासन भी लेट आया है यहाँ से।
यहाँ पे लूटपाट भी आपके साथ की गई?
हाँ, लूटपाट भी करी गई है,
मंदिर में भी लूटपाट।
हाँ, मंदिर में लूटपाट करी, 10-5 हजार रुपए थे यहाँ से, उनको भी छोड़ा ले गए हमसे। अपने बच्चों को बचा के अब बड़े मुश्किल से जाके अपनी जान बचाई है लोगों से, पड़ोसी लोग बहरा पड़े हैं, जब उन्होंने जान बचाई है।
जान बचाई है सर,
जिस जगह मैं इस समय खड़ा हूँ ये पूरी सड़क काली है, और ये सड़क काली इस वजह से नहीं है कि इस पे डामर पड़ा हुआ है। यहाँ पर एक साथ कम से कम 5 गाड़ियां जो हैं वो जलाई गई थी, और जिनके अवशेष जो हैं वो इन गाड़ियों के अभी भी आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से ये टायर जले हुए जो हैं ये यहाँ पर पड़े हुए हैं। अभी क्योंकि पुलिस जो है वो मलबे की सफाई का काम कर रही है, पूरी सड़क पर आपको सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे, कांच की कांच दिखाई देगी, और इसके अलावा जो जली हुई गाड़ियां थी उनके अवशेष दिखाई देंगे। ये पूरी सड़क आप यहां देखिए, एक जो दिन में अपनी रेहड़ी लगा के अपना रोजगार करता होगा उसकी रेहड़ी को भी यहां पर जला दिया गया। ये पूरा इलाका जो कल था, ये पूरा इलाका कल पूरी तरीके से अशांत था, यहाँ पर जमकर पत्थरबाजी हो रही थी। नू में वाकई में प्रशासन की कार्रवाई पे सवाल तो उठते ही हैं, लेकिन किस तरीके से इस हिंसक भीड़ ने धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया ये भी वाकई में सोचने का विषय है। आदित्य प्रताप सिंह, जी मीडिया, नू।
नू हिंसा पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर का एक बयान हम आपको सुनवाना चाहते हैं, इसके बाद हम उनके कार्यकाल में हुई हिंसा की घटनाओं और सरकारी नाकामियों का विश्लेषण करेंगे।
समाज की एक यात्रा जो हर वर्ष निकलती थी उसका आयोजन किया जा रहा था, और कुछ लोगों ने एक षड्यंत्र रच करके उस यात्रा पर आक्रमण करना शुरू किया, और आक्रमण न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। जो लोग इस षड्यंत्र में नू से बाहर के भी शामिल हुए हैं उनको निश्चित रूप से पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी तक सब मिलाकर 44 के आसपास FIR हुई है और 70 लोगों के खिलाफ अभी नामजद उनको किया गया है, उनको हिरासत में लिया गया है। छानबीन के बाद जो भी दोषी लोग होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा।
कड़ी कार्रवाई होगी, अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। हिंसा की घटना बहुत दुखद है, ये कुछ ऐसे बयां हैं जो अक्सर हम उन नेताओं के मुंह से सुनते हैं जिनके ऊपर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है। जहां तक हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर की बात है तो नू की हिंसा रोकने में हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों नाकाम रहे हैं। पुलिस को ब्रज मंडल शोभा यात्रा निकलने की पूरी जानकारी थी, इसके बावजूद पुलिस हिंसा रोकने में नाकाम रही। शोभा यात्रा में पथराव को खुफिया तंत्र की बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि पथराव के लिए पत्थर पहले से इकट्ठा किए गए थे। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार खुफिया जानकारी के बावजूद हिंसा रोकने में नाकाम रही हो। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए जब खुफिया सूचना के बावजूद हरियाणा सरकार हिंसा नहीं रोक पाई। हम आपको हरियाणा सरकार की नाकामी के कुछ उदाहरण देते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने अक्टूबर 2014 में हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। इसके एक महीने बाद ही उनकी सरकार की पहली परीक्षा आ गई। हरियाणा के हिसार ने आश्रम चलाने वाले बाबा रामपाल को गिरफ्तार किया जाना था। मनोहर लाल खट्टर सरकार को रामपाल की गिरफ्तारी में 10 दिन लग गए थे। इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत भी हुई थी। इस हिंसा में हजारों लोग आश्रम में फंस गए थे। इसके बाद फरवरी 2016 में हरियाणा सरकार एक बार फिर से प्रदेश की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से फेल हो गई थी। इस बार मौका था जाट आरक्षण का। जाट आरक्षण के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा फैल गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने में हरियाणा सरकार को एक महीना लग गया था। इस हिंसा में 30 लोगों की मौत तक हो गई थी। हिंसा की वजह से उत्तर भारत के राज्यों को करीब 34,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। यही नहीं, 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द किया गया था। कई उद्योग पूरी तरह से ठप हो गए थे। इस वारदात के ठीक एक वर्ष बाद अगस्त 2017 में बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी को लेकर भी हंगामा हुआ था। इस हिंसा में 30 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे। इस मामले में हरियाणा सरकार को पहले से पता था कि बाबा राम रहीम को रेप केस में सजा सुनाई जानी है। बावजूद इसके हरियाणा सरकार ने राम रहीम के हजारों समर्थकों को चंडीगढ़ और पंचकुला में इकट्ठा होने दिया। जैसे ही राम रहीम की सजा का ऐलान हुआ था, वैसे ही हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा को रोकने में हरियाणा सरकार पूरी तरह से नाकाम रही थी। हम ये मानते हैं कि अचानक हुई हिंसा को रोक पाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं कि योजनाबद्ध तरीके से हिंसा करने वालों की जानकारी पुलिस को ना मिली हो। नूह की शोभा यात्रा में हुई पत्थरबाजी की प्लानिंग पहले से की जा चुकी थी, ये बात हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज भी मानते हैं। सवाल यह है कि अगर शोभा यात्रा पर पथराव की जानकारी थी तो फिर उस हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं की गई? डीएनए में हम फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए।
चल रही है, हम जिंदा मौत के मुंह से निकल के आए हैं।
यहाँ पर मेवात के अंदर बच्चे, छोटे छोटे बच्चों ने गोलियां चलाई हैं।
हरियाणा में हिंसा की आग किसने भड़काई?
गोलियां चलाई जा रही है, ये हिंदुस्तान में ही मिनी पाकिस्तान बना दिया है।
मेवात में माहौल किसने बिगाड़ा?
अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है? पत्थर तो बाहर चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से।
दंगाइयों का मास्टरमाइंड कौन?
ये गाड़ियां जल रही हैं, इन गाड़ियों से विस्फोटों की आवाज आ रही है और लगातार ये वही जगह थी जहां से शोभा यात्रा शुरू होनी थी। यहां पर आप देख सकते हैं कि पलटी हुई गाड़ियां हैं, सैकड़ों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ ना कुछ यहां पर धमाकों की जो आवाज है वो आ रही है। यहीं से थोड़ी दूर पे वो नल्हड़ मंदिर था जिस मंदिर से ये यात्रा शुरू होनी थी।
आसमान छूती आग की लपटें उस साजिश की गवाही दे रही हैं जो हरियाणा के नूह में रची गई। अमन और शांति के दुश्मनों ने शहर के कई हिस्सों में इसी तरह आग लगाई और जमकर बवाल मचाया।
लोगों की तादाद में आए हैं और पत्थर बरसाए, हमने तो अपनी जान नीच बचाई है, गाड़ी हमारी तहस नहस कर दी। पर तीन घंटे हो गए।
कौन कौन लोग थे, कौन दिख रहे थे?
ये दूसरे संप्रदाय के लोग हैं जो इन्होंने झगड़ा किया। किस बात का झगड़ा किया? हमारा तो किसी से कोई विवाद ही नहीं है।
हम लोग उस यात्रा में भी नहीं थे?
नहीं थे, हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमारे कोई यात्रा से लेकर।
अगर उनको उनकी कोई लड़ाई है, यात्रा वालों से लड़ाई है, यात्रा वालों पर विरोध करना था उनका, उनका आमदनी का विरोध करने का क्या मतलब है? पूरी गाड़ी फोड़ दी गई है, वो देखो चंडी हलवाई है, सारा फोड़ दिया गया है, आगे आगे सारी गाड़ी फोड़ दी गई है।
नूह में हिंदू संगठनों की ब्रजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया। भीड़ की शक्ल में आए उपद्रवी हथियारों से लैस थे। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक इलाके में हालात बेकाबू हो गए। हर तरफ पथराव और आगजनी से दहशत फैल गई।
लोग तो हम एक दुकान में बैठ गए थे, एक दुकान में घुस के बैठ गए थे।
तो आप लोग कहाँ जा रहे थे?
हम अपने घर पे जा रहे थे, वापिस मंदिर से।
अचानक से वहाँ पे पत्थरबाजी होने लगी।
अचानक से गोलियां चली, पत्थर क्या चला है? पत्थर तो बाहर चला, पहले गोली चलेगी शीशे में से।
हिंसक भीड़ ने सड़कों पर तांडव मचाया, छतों से गलियों से लगातार पत्थर फेंके गए और पुलिस पर भी हमला किया गया।
में यहाँ पे 5 गाड़ियाँ जो है वो एक साथ जला दी गई। अंदर खड़ी आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। पूरे पुलिस स्टेशन जो साइबर क्राइम है उसको पत्थरों से भर दिया गया। शायद ये तस्वीरें नूह ने सोची नहीं थी। और आज जिस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं, पुलिस कर्मी भयंकर तरीके से घायल हुए।
ब्रजमंडल यात्रा नूह के नलहड़ शिव मंदिर से फिरोजपुर छिरका की तरफ रवाना हुई थी। इसी दौरान उपद्रवियों ने हमला कर दिया और हिंसा भड़क उठी।
और अब डीएनए में आपकी राय जानने का वक्त है, जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डीएनए आपका शो है। इसीलिए आप डीएनए में क्या देखना चाहते हैं ये जानना और समझना हमारे लिए बेहद जरूरी है। आपने देखा ही होगा, हमने जगह जगह माइक लगाकर लोगों से पूछा कि वो डीएनए में क्या देखना चाहते हैं। आज मैं भी लोगों के बीच गया और उनसे डीएनए को लेकर राय पूछी तो उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। यहाँ पर मैं इस मॉल में आया हूँ और यहाँ पर मैं लोगों से पूछूंगा कि हमें किस तरह के मुद्दों का विश्लेषण करना चाहिए। हम वही मुद्दे उठाना चाहते हैं जो लोग सच में मानते हैं कि वो रेलेवेंट है और जिसके लिए रिसर्च होना जरूरी है, जिसका विश्लेषण करना जरूरी है। आजकल जो मुद्दे चल रहे हैं भारत में, उसमें कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कॉमन मैन को उठाना चाहिए?
सबसे बड़ा तो हमारा आंतरिक सुरक्षा को लेकर है।
अच्छा, ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हो रही हैं, आपने देखा ही होगा आजकल एक नया लेटेस्ट चल रहा है वो सीमा वाला जो है
जी।
वो बिना किसी उसके वो अपने इंडिया में आ गई, तो मतलब इससे लगता है कि हमारी जो वो है सुरक्षा है वो थोड़ा कहीं ना कहीं वो हो रही है
जी। आपने सुना कि आंतरिक सुरक्षा का मामला है जिसके ऊपर विश्लेषण होना चाहिए।
मेनली ये जो चुनाव आने वाले
हैं जी,
उसके बारे में
24 के चुनाव
वाले मेन बात चलनी चाहिए इस टाइम। तो
आपको क्या लगता है भारत में आजकल कौन से ऐसे मुद्दे जिसके ऊपर विश्लेषण होना चाहिए?
ज्यादातर ये मणिपुर में जो लड़ाई चल रही है इस चीज पे है
जी।
अभी फिलहाल हरियाणा में भी लड़ाई चलने लगी है इन सब चीज पर।
अभी तो फिलहाल जो चल रहा है आई फ्लू चल रहा है ट्रेंड में, आई फ्लू के ऊपर होना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए इसके लिए।
एक तो एजुकेशन का पॉइंट क्या होता है, एजुकेशन जो दी जाती है उसके अकॉर्डिंगली जॉब्स नहीं मिलती। हमारे यहाँ पर सारे लोग एकदम इकट्ठे होकर रहे हैं, अकेले नहीं होता है, कोई भी काम करते हैं अकेले होना चाहिए, नहीं होता है, सारे लोग इकट्ठे होकर काम करेंगे जब ही मुद्दा पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा सर।
तो आपको लगता है कि यूनिटी के ऊपर बहस होनी चाहिए, जो सब लोग मिलजुल के रहें उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। भारत में इंडिया में आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर बहस होनी चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, विश्लेषण होना चाहिए, क्या लगता है आपको?
आई थिंक द प्रायोरिटी शुड बी एजुकेशन, द एजुकेशन सिस्टम।
व्हाई डू यू से सो?
Because I feel like my priority and when it comes to me, so the first thing that comes is that education. I'm from medical background. So if I talk about medical, we are studying but lack of opportunities. And if I talk about the way of portraying all the things in the college and the guidance, these things are very, very, very lacking.
Very nice. क्या नाम है आपका?
प्रतिष्ठा।
प्रतिष्ठा ने हमें एक बहुत ही अच्छा मुद्दा दिया है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। आई एम श्योर कि डीएनए में आप इसका विश्लेषण जरूर देखेंगे।
लेडीज से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जिसपे होना चाहिए, जैसे लाइक अभी पीछे मणिपुर का केस हुआ था, वो कुछ टाइम तो घूम कर जाता है उसके बाद दब जाता है, सब चीजें दबाई दी जाती है कि लेडीज इतना मतलब इतना स्ट्रगल कर रही है, उनके लिए कुछ होता नहीं है कि कुछ भी वो मतलब करें।
रिजर्वेशन इन एजुकेशन शुड बी देयर, इट शुड बी देयर, इट इज रिक्वायर्ड, बट there are really deserving people, they should not lose the opportunity. And freebies is not there, but it kills the soul actually.
Neeraj ji ne bahut hi acche do mudde diye hain jisme freebies ke upar baat honi chahiye, research hona chahiye aur reservation ke upar bhi uska visleshan hona chahiye. Thank you so much. Agar aapke paas bhi DNA ko behtar banane ke liye koi sujhav ya koi raay hai ya aap chahte hain ki hum samaj ya aapse juda koi mudda DNA mein uthaye, तो आप हमें वीडियो मैसेज के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। वीडियो भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8588085811। ये नंबर आप अपने मोबाइल फोन में सेव कर लीजिए। डीएनए में आज इतना ही, अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे आपसे जुड़ी नई खबरों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार।